पृष्ठ संख्या 139 अध्याय 11 सौर्य संप्रदाय सूर्योपासना। सूर्योपासना का भारतीय धर्म में एक प्रमुख स्थान है। इसको विदेशी बताने का प्रयास कुछ विद्वानों ने किया है, पर यदि सभ्यता के विकास के साथ इसकी मान्यता का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि यह सैंधव सभ्यता में किसी रूप में विद्यमान था। फिर वैदिक काल में इसकी महत्ता बढ़ी और बाद में विष्णु नारायण के साथ इसकी एकात्मकता के कारण इसका महत्व वैष्णव धर्म के विकास के साथ उसी में समाहित होने लगा था। फिर भी इसका अपना अस्तित्व बना रहा। इसी से कुछ पुरातन मुद्राओं पर इसकी आकृतियां मिली हैं तथा इसके मंदिर और मूर्तियों का भी ज्ञान विकासकालीन अवस्था में देखने को मिलता है। इस आधार पर लगता है कि सौर्य संप्रदाय यहाँ प्रचलित था, भले ही इसकी स्थिति शैव या वैष्णव की तरह व्यापक नहीं थी। ईसा पूर्व काल तक सैंधव सभ्यता में बहुत स्पष्ट तो नहीं, पर प्रतीत रूप से सूर्य की स्थिति का ज्ञान मुहरों पर अंकित आकृतियों से होता है। कुछ मुहरों पर गोल आकृति के चारों ओर रेखाएं निकलती हुई दिखती हैं। यदि इसको हम सूर्य और उसकी किरणों का प्रतीक मान ले, जो मानना स्वाभाविक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में सूर्योपासना थी। पर इस प्रकार की आकृतियों का बहुत कम मिट्टी की मुहरों पर पाया जाना सिद्ध करता है कि इस काल में इस धर्म का स्वरूप व्यापक नहीं था। यह भी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये खेल के लिए बनाए जाते थे या पूजा के लिए। वैदिक काल में सूर्य की मान्यता व्यापक हो चली थी। ऋग्वेद में 10 मंत्र सूर्य की स्तुति में दिए गए हैं। वैदिक गायत्री को यदि देखा जाए तो वह सूर्य की स्थिति को ही व्यक्त करता है। इसमें सूक्तों में सूर्य के रथ को, जिसमें वे विराजमान होते हैं, 1 से लेकर 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने की चर्चा की गई है, जो पीछे सूर्य की प्रतिमा शास्त्रीय स्वरूप से पूर्ण मेल खाता है। इनका संबंध उषा के साथ स्थापित किया गया है, पर उषा के साथ इनका संबंध विभिन्न बताया गया है, जैसे उषा के पुत्र, उषा के पति, उषा के प्रेमी। इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि उषा और सूर्य का संबंध इस समय स्थापित हो तो गया है, पर उसका स्वरूप निर्धारित नहीं हो पाया है। वह संसार के जंगम और जड़ जीवों की आत्मा कहे गए हैं। सूर्य आत्मा जगत्थुसश्च। इस युग में वे प्रकृति के रूप में थे। ऋग्वेद की एक ऋचा में सूर्य को अग्नि का रूप कहा गया है। सूर्य के अनेक नामों का ज्ञान ऋग्वेद में मिलता है, तथा यथा या आदित्य, सविता, प्रसविता, विवस्वान आदि। यह इनकी व्यापकता का बोधक है। सूर्य और आदित्य को भिन्न बताते हुए यहाँ कहा गया है कि आदित्य सूर्य का मार्ग बनाते हैं, पर यही एक स्थल पर उदयकालीन सूर्य के साथ आदित्य का नाम प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार सूर्य और आदित्य के बीच 2 विरोधी बातें ज्ञात होती हैं। इसका एक नाम सविता और प्रसविता भी यहाँ लिया गया है। विवस्वान का उल्लेख प्रातःकालीन सूर्य के लिए किया गया है। इसी पर समस्त जगत को आधारित बताया गया है। यह दिन और रात्रि का मापन करते हैं। उसकी उपासना का उद्देश्य पाप का निवारण बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण के कथा में से विष्णु और सूर्य के एकीकरण का ज्ञान मिलता है। उसमें वर्णित है कि एक बार विष्णु एक धनुष के सिरे पर अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे थे कि देवताओं ने उसकी प्रत्यंचा काटने के लिए चींटियों को भेजा। उनके द्वारा प्रत्यंचा काटे जाने पर धनुष का वह सिरा सहसा ऊपर उछला और विष्णु का सिर उसके प्रवाह से धड़ से अलग होकर ऊपर उछल पड़ा। वहां से वह नीचे घृण शब्द करने के साथ गिरा। तब उसका स्वरूप सूर्य का था। तभी से घृण शब्द तांत्रिकों द्वारा सूर्य की उपासना के लिए मंत्र स्वरूप स्वीकार किया गया। इस विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में भी सूर्योपासना प्रचलित थी महाकाव्यों के समय वैदिक धर्म की प्रधानता घटने लगी थी। सूर्य की महत्ता इस समय इसलिए व्यापक नहीं थी कि सूर्य के अधिकांश अवयव विष्णु में समाहित माने जाते थे। साथ ही पाशुपत शैव संप्रदाय का विरोध भी अब व्यापक रूप ले चुका था। फिर भी सूर्योपासना संबंधी स्फुट विवरण प्राप्त होते हैं। रामायण के एक प्रसंग में कहा गया है कि एक ऋषि मंदाकिनी नदी के तट पर उद्धव बाहु करके खड़ा होकर सूर्य की उपासना कर रहा था। महाभारत के समय पाशुपत शैवों द्वारा इसका विरोध खुलकर उनके रुद्र संबंधी इस विवरण से सामने आता है कि रुद्र अपनी अदम्य शक्ति और भयावह स्वरूप से आकाशी देवों की ओर लपके। क्रोधातुर रुद्र ने भग की आंखें फोड़ दी। क्रोध के आवेश में वे पुषण पर अपने चरण से प्रहार किए, उस देवता के दांतों को तोड़ दिए जब वह यज्ञ भाग का आहार करने के लिए बैठा था। पर दूसरी ओर हमें महाभारत से ही ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना में 108 ऐसे थे जो सूर्योपासक थे। गृहस्थ तथा स्मार्त भी उनकी पूजा करते थे कि उनके प्रसन्न होने पर संपत्ति, गौरव और दीर्घायु प्राप्त होगी। इन विरोधी प्रसंगों से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि शैवों और वैष्णवों के विरोध के कारण पाशुपत शैवों ने सौर्य संप्रदाय, जो विष्णु से संबंधित था, के साथ इस प्रकार के व्यवहार करने की कल्पना रुद्र के संबंध में की थी। सिकंदर के साथ भारत पर विदेशी आक्रमण के समय यूनान के कुछ लेखक भी आए थे। उन्होंने यहाँ के सौर्य संप्रदाय के विषय में लिखा है कि भारतीय सोरो एडेईसोस सूर्य देवता की पूजा करते थे। यह विष्णु की पूजा के साथ साथ प्रचलित था। यद्यपि विष्णु ने, जो मूलतः एक सूर्य देवता ही थे, अपना प्रभाव समाज में बना लिया था, उसी से कर्टियस ने लिखा है कि पुरु की सेना जब बढ़ने को तैयार खड़ी थी तो हिरेकिल्स विष्णु की मूर्ति उसके सम्मुख लाई गई। यह शुभ के लिए किया गया होगा। यहाँ हिरेकिल्स सूर्य के लिए प्रयुक्त है और विष्णु के साथ इसका उल्लेख दोनों देवताओं के बीच का साम्य का बोधक है। पुल्टार्क ने झेलम के तट पर सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है तथा फिलास्ट्रेटस तक्षशिला में भी इसके मंदिर का स्थित होना बताया है। तो स्पष्ट है कि पश्चिमी पंजाब में 5वीं शती ईसा पूर्व में सूर्योपासना का विशेष चलन था। भारतीय साहित्य में डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इतने पुराने समय से सूर्य मंदिर की बात नहीं ज्ञात होती। वाराह मिहिर के अनुसार भारत में मग ब्राह्मणों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराकर सूर्य प्रतिमा पधराई गई थी। ये मग शकों के ब्राह्मण थे। वाराह मिहिर लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व के हैं। क्या उस समय शक भारत में थे? इसके उत्तर में जे प्रीनिथुलुस्थी ने बताया है कि शकों की एक शाखा 5वीं शती ईसा पूर्व में ही भारत में प्रवेश कर चुकी थी और जहां वे बसे थे उस स्थान को शाकल कहा गया। जो शक प्रथम शती ईसा पूर्व में आक्रमण करते हुए आए थे वे दूसरी शाखा के थे तथा शकों का वह भारत में दूसरा प्रवेश था। पातंजलि से भी इसकी पुष्टि होती है। उसने शूद्रनाम अनर्वसितानाम सूत्र के आधार पर बताया है कि उसके समय के शक न शूद्र माने जाते थे, न उनके साथ खान पान की मनाही थी। इससे ज्ञात होता है कि ये भारतीय समाज में सम्मिलित हो चुके थे, अतः सौर संप्रदाय के विकास में इनका भी योगदान बना रहा। शुंग काल के में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही भारतीय क्षेत्रों में इस धर्म को स्थान मिल चुका था। इसका प्रमाण है कि बोध गया उत्तरी भारत की कला और भाजा दक्षिण भारत की गुफाओं की में सूर्य की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर के पास की वेस्टिनी पर अंकित आकृति में उषा के साथ चार घोड़ों द्वारा खींचे जाते हुए रथ पर सूर्य विराजमान है। कुछ विद्वान इस पर हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव बताते हैं, पर कलाविद रालैंड के अनुसार इसमें कोई भी यूनानी तत्व नहीं दिखता। यह पूर्णतः भारतीय प्रतिमा शास्त्रीय आधार पर उत्कीर्ण है। भाजा के शैलोत्खात गुहा में उत्कीर्ण सूर्य आकृति में विदेशीपन बिल्कुल ही नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विदेशी देवता सूर्य और उनके संप्रदाय ने पश्चिमी पंजाब में अपना स्थान बना लिया था, जबकि वैदिक देवता सूर्य का प्रसार शेष भारत में था। इस प्रकार भारतीय सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। सिक्कों के आधार पर इस समय सूर्योपासना का विकास ज्ञात होता है। स्थानीय सिक्कों पर सूर्य की आकृतियां इसके व्यापक प्रभाव की द्योतक है। इसका अंकन कार्ड उज्जैनी तथा पांचाल के सिक्कों पर देखने को मिलता है। कार्ड के सिक्के भी पंजाब क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं। इनके कुछ सिक्कों पर एक ओर सूर्य की आकृति है और दूसरी ओर अश्व की। कुछ पर सूर्य की खड़ी आकृति के बाएं हाथ में भाला है और दाएं हाथ में छोटा झोला। यह संभवतः अंधकार को भेदने के लिए भाला रखे हैं। कहीं कहीं गोल आकृति के रूप में इनका प्रदर्शन हुआ है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय सूर्योपासना पर बौद्ध मूर्तियों का प्रभाव था। तभी सूर्य मूर्तियों के निर्माण में भी बौद्ध मूर्तियों का प्रभाव दिखता है। रॉलैंड के अनुसार सर्टेनली इवन इन प्राइमिटिव बुद्धिज्म शाक्य मुनि हैड कम टू बी आइडेंटिफाइड विथ द सन गॉड एंड हिज नेटिविटी लिंक्ड टू द राइजिंग ऑफ अनदर सन। निश्चय ही प्रारंभिक बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि की पहचान सूर्य देवता से की जाने लगी थी और उनका जन्म दूसरे सूर्योदय के रूप में जाने लगा। भारत में वला पहाड़ियों का द्वितीय आक्रमण ईस्वी सन के आसपास हुआ। इनमें ग्रीक बक्त्री आक्रमणकारी पश्चिमी भारत में कुछ दिनों तक रहे, जब तक कि शकों का प्रवेश वहां नहीं हुआ। इन भारतीय ग्रीक बक्त्री शासकों के समय के अनेक सिक्कों पर सूर्य की आकृतियां प्राप्त होती हैं। इनमें फिलाक्सेनस, टेफेलस, प्लेटो आदि के सिक्के विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन पर जूता पहने विदेशी आकृति और स्वरूप में सूर्य की मूर्तियां अंकित है। यह मग जाति सौर्य प्रतिमा का प्रभाव व्यक्त करता है। इसका कारण यह है कि मग ब्राह्मण जैसा ऊपर देखा जा चुका है, सिकंदर के आक्रमण के पूर्व पश्चिमी भारत में आ चुके थे। अब विदेशियों द्वारा शासित होने वाले उस क्षेत्र में उनको अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। इससे सूर्य पूजा में विदेशीपन प्रविष्ट होने लगा, पर अभी यह पश्चिमी भारत तक ही सीमित था। किंतु इसने अपना मार्ग भारत के भीतरी भाग पर बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसी से भारतीय और संप्रदाय का प्रभाव आगे के दिनों में इस क्षेत्र में विकसित होता दिखता है। शक, सीथियन, पार्थियन और कुषाण अब भारत में प्रवेश किए। कुषाणों ने यही अपना न केवल राजनीतिक प्रभाव जमाया, वरन सांस्कृतिक प्रभाव भी स्थापित किया और भारतीय संस्कृति में गुलने मिलने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ विदेशी तत्व भी उनके साथ हमारी संस्कृति में प्रविष्ट होने लगे तथा शकों पर भी भारतीयता की पूरी छाप पड़ने लगी थी, जिससे पीछे ये पूर्ण भारतीय स्वरूप धारण कर लिए। इस समय विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, गरुण पुराण आदि के अनुसार शाक द्वीप में सीथियन परंपरा में सूर्योपासना प्रचलित थी, क्योंकि वहां मग ब्राह्मण थे जो भारत में एक नई परंपरा के सूर्योपासना की स्थापना के उत्तरदायी थे। इसी से वाराह मिहिर ने कहा है कि अब से जो भी राजा सूर्य का मंदिर बनवाएगा वह मग ब्राह्मणों को अपना उपासक रखेगा। ये मग ब्राह्मण उत्तरी और सुदूर दक्षिणी भारत में फैलने लगे थे। टालमी के भूगोल से ज्ञात होता है कि ये तमिल, पांड्य आदि देशों में फैल चुके थे। इससे उनकी विशेष पद्धति की सूर्योपासना ने अपना स्वरूप भारतीय सूर्य पूजा के साथ साथ ग्रहण करना प्रारंभ किया था, पर दक्षिण में अभी भी भारतीय परंपरा से ही सूर्योपासना का चलन था। गांधार कला केंद्र का विकास कुषाण शासकों के समय में विशेष रूप से हुआ। इसमें यूनानी शैली की भारतीय मूर्तियां बनती थी। पहले यह कला भारत की पश्चिमी सीमा पर गांधार प्रदेश में ही स्थापित हुई, पर पीछे इसकी शैलीगत विशेषता भारत के शेष भागों में भी फैली। यहाँ की बनी एक सूर्य मूर्ति में सूर्य लंबा ईरानी जूता पहने चार घोड़ों द्वारा खींचे जाते रथ पर विराजमान है और उनके द्वारा दो दासियां हैं। रथ के नीचे दाढ़ी वाली आकृति संभवतः अंधकार को कुचलते हुए दिखाया गया है। इसमें स्पष्ट विदेशी प्रभाव दिखता है। यही आकृतियां यामल के अनुसार गांधार के ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती थी, जो मग थे तथा कला में सिद्धस्तता के कारण जिन्हें चित्र पंडित कहा गया है। इस प्रकार इस समय दो शाखाओं में सौर संप्रदाय यहाँ विद्यमान था, भारतीय और विदेशी, जो क्रमशः समीप आकर एकाकार बनने लगे थे। इसी से उप पुराणों में कृष्ण पुत्र शाम्ब को कथा आती है, जो अपनी कुष्ठ निवारणार्थ शक द्वीपीय मग ब्राह्मणों को बुलाए थे, जिन्होंने चंद्रभाग नदी के किनारे निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा कर उनको कुष्ठ से मुक्ति दिलाई थी। ये मग ब्राह्मण सूर्य और मिहिर गोत्री निकशुभा से उत्पन्न थे तथा कमर में करधनी पहनते थे, जो अव्यंग कहा जाता है। भारतीय ग्रंथों में सूर्य का एक नाम मिहिर आता है तथा जो करधनी सूर्य की मूर्तियों में बनी है उन्हें भी अव्यंग ही कहा जाता है। इस प्रकार आगे चलकर एक विदेशीपन भारतीय संस्कृति में समाहित हो गया, किंतु कुषाण काल में यह प्रभाव अभी तक ही बना रहा, क्योंकि कानपुर के एक गांव में लाल भगत से प्राप्त इस समय की सूर्य मूर्ति के स्तंभ पर मयूर की आकृति का होना तथा उसके लेख कुमार वर का अंकन स्कंद कार्तिकेय के साथ इनकी समीपता दिखता है। डॉक्टर गोपीनाथ राव के मत में भागवत पुराण के अनुसार असुरों ने जब सूर्य पर आक्रमण किया तो उनके रक्षार्थ देवताओं ने उनके एक ओर स्कंद और दूसरी ओर अग्नि को स्थापित किया, जो पीछे दंडनायक और पिंगल के नाम से जाने जाते थे। उड़ीसा के अनंत गुफा में प्रथम शती ईस्वी की रथ पर विराजमान सूर्य मूर्ति के साथ दो स्त्री सहयोगियों की आकृतियां अंकित हैं, जिनमें एक पिंगला है। ये दोनों मूर्तियां वैदिक कालीन सूर्य परंपरा की द्योतक है, पर इसी समय की सूर्य की एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय में रखी है, जो कुषाण राजाओं की तरह विदेशी वेशभूषा सलरिका घुटने तक जूते में है। उसकी पहचान मात्र इसके हाथ में कमल होने से सूर्य प्रतिमा से की जाती है। गुप्त काल के आने पर सौर्य संप्रदाय का विकास और अधिक हुआ। कालिदास ने रघुवंश के में सूर्य के साथ हरे अश्वों का उल्लेख किया है। इस काल की बनी अनेक सूर्य मूर्तियां भारतीय कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा मथुरा संग्रहालय में विशेष रूप से संग्रहित हैं, जो इसकी व्यापकता को स्पष्ट करती हैं। साथ ही मग ब्राह्मणों को सूर्य मंदिरों में पुजारी बनाए जाने की सिफारिश वराह मिहिर द्वारा किया जाने मगों के द्वारा प्रसारित सूर्य पूजा की महत्ता की प्रधानता और व्यापकता को सिद्ध करता है। इस काल के प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस समय तीन सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम और बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख से तंतुवाय श्रेणी द्वारा दशपुर में एक सूर्य मंदिर बनवाया गया था, दूसरा इंदौर में बना था, जिसमें दीपक जलाने के लिए देव विष्णु नामक ब्राह्मण द्वारा अक्षय निवि जमा करने की बात स्कंद गुप्त के समय के इंदौर अभिलेख में की गई है। तीसरा ग्वालियर में मातृचेट द्वारा गोपा पर्वत, जहां आज ग्वालियर का किला है, पर सूर्य मंदिर की स्थापना का ज्ञान मिहिर कुल के ग्वालियर अभिलेख से होता है। इनसे विदित होता है कि मग सूर्य संप्रदाय का विस्तार उत्तरी भारत में मध्य प्रदेश तक फैल चुका था। भीटा और बसरा से प्राप्त जिन मुहरों का आदित्यस्य या रविदास अंकित है, वे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक इस संप्रदाय के प्रसार को स्पष्ट करती हैं। इन मुहरों पर वेदी की आकृतियां बनी हैं। यह ईरानी परंपरा का द्योतक है, पर इस समय इसका पूर्ण भारतीयकरण हो चुका था। तभी सूर्य के प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों में मत्स्य पुराण के अनुसार देशी और विदेशी परंपरा के मिले जुले रूप का उल्लेख है। जहां लाल शरीर, लंबा कोट, मूंछ, विदेशी जूता एवं स्वरूप का निर्देश है, वहीं भारतीय वस्त्र का उल्लेख है। दूसरी ओर इस काल की बनी दक्षिण भारतीय मूर्तियों में पूर्ण भारतीय विद्यमान है, क्योंकि उनके पैर नंगे हैं तथा उनके हाथ में पूर्ण विकसित कमल है, जो वक्ष तक उठे हाथों में दिखते हैं। पर किरीट मुकुट दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से दिखते हैं। इसे कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में सूर्य पूजा ईरानी प्रभाव से प्रभावित थी, जबकि दक्षिण भारत में यह भारतीय परंपरा पर इस समय आधारित थी। हूण नरेश तोरमाण और मिहिर कुल की सूर्योपासक थे। मिहिर कुल ने कई मंदिर सूर्य देवता के बनवाए थे। हर्षकालीन भारत तथा उसके बाद के समय में भी यह धर्म विकसित रहा। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि आनंद आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन सभी सूर्य की उपासना करते थे। हर्ष भी सूर्य की महत्ता स्वीकार करता है। विन सॉन्ग से ज्ञात होता है कि प्रयाग की सभा के दूसरे दिन हर्ष सूर्य की मूर्ति स्थापित कर उसका पूजन करता था। हर्ष के जन्म के समय बुलाए गए ज्योतिषियों में एक का नाम तारक था, जो भोजक जाति का था। भोजक मग ब्राह्मणों की ही एक उपजाति है, जैसे जजक, जाजक आदि, जैसा ऊपर वर्णित है। इस समय मुल्तान में चंद्रभागा पदार्थों से अलंकृत था। इस मंदिर के साथ लगा हुआ विश्राम गृह तथा निःशुल्क भोजनालय आदि की व्यवस्था थी। यहाँ लगभग 1,000 तीर्थयात्री नियमित पूजा करते थे। इसी प्रकार के दूसरे मंदिर की स्थिति का ज्ञान कन्नौज में विन सॉन्ग देता है। ये दोनों ही केंद्र विदेशी प्रभाव में सूर्योपासना को सिद्ध करते हैं। पूर्व मध्य काल में भी सूर्य पूजा व्यापक थी। इस समय के कुछ अभिलेख सूर्य की उपासना से ही प्रारंभ होते मिलते हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, की मूर्ति तथा व्यापकता का उल्लेख अनेक मुसलमान इतिहासकारों ने किया है। इस समय के अभिलेखों में सूर्य विभिन्न नामों से संबोधित किए गए हैं, यथा भास्कर, मार्तंड, वरुण स्वामी इत्यादि। शंकराचार्य के समय दक्षिण भारत में भी यह संप्रदाय तांत्रिक प्रभाव में आने लगा था। इस समय 6 उपवर्ग बन चुके थे, जो लाल चंदन, लाल लेप, लाल फूलों की माला और अष्टाक्षर मंत्रों का जप प्रारंभ कर दिए थे। इस संप्रदायों में से 6ठा संप्रदाय पूर्ण तांत्रिक प्रभाव में था, जो अपने शरीर के विभिन्न अंगों का पर गर्म लोहे से सूर्य के चिन्ह का छाप लगाता था। इस समय रुद्र और विष्णु के साथ आदित्य का एकीकरण हो चुका था। अब सूर्य विष्णु की तरह संसार का निमित्त कारण माना जाने लगा था। फिर भी इस समय यह संप्रदाय अधिक प्रभावक नहीं लगता है।